आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशु शाहजी और मैं पढ़ती हूँ बनस्थली विद्यापीठ में। मैं भी आप जैसे ही एक छात्रा हूँ और अभी अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में पढ़ रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी, उसमें पाठ 7 जिसका नाम है भक्ति माधुरी उसके अभ्यास। तो बच्चों, हमने कल देखा कि सूरदास जी के विचार क्या थे हमारे कृष्ण जी के जीवन के बारे में, कि वह कैसे हमारे कृष्ण जी के जीवन का एक भाग बनना चाहते थे और वो क्या क्या देख कर, क्या क्या न्योछावर कर या फिर क्या क्या त्याग कर हमारे कृष्ण जी का जीवन का भाग बनना चाहते थे। जैसे आप लोग कभी कभी कुछ दिल से चाहते नहीं हैं, वैसे ही हमारे सूरदास जी भी यही चाहते थे और क्या पता शायद उनकी इच्छा पूरी भी हो गई हो, है ना। तो आज हम करेंगे इस पाठ के एक्सरसाइजेस या फिर अभ्यास। तो आप अपनी किताब की पेज नंबर 37 में देखिए, वहां से हम शुरू करेंगे हमारा पहला अभ्यास जो है उच्चारण के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, जान चुके होंगे अभी तक, कि उच्चारण के लिए में वह शब्द दिए जाते हैं जो बोलने पे कठिन होते हैं और आपको उन शब्दों को दोहराना होता है ताकि आप उन शब्दों का उच्चारण अच्छे से समझ पाए और कर पाए। तो आपके पास यहाँ पे है 5 शब्द और हर शब्द को आप लोगों को मेरे पीछे दोहराना है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। आपका पहला शब्द है पैंजनी, पैंजनी, पैंजनी। आपका दूसरा शब्द है भामिनी, भामिनी, भामिनी। आपका तीसरा शब्द है न्योछावर, न्योछावर, न्योछावर। आपका चौथा शब्द है कलधूत, कलधौत, कलधौत। और आपका आखिरी शब्द है मलहावे, मलहावे, मलहावे। अब है आपका दूसरा प्रश्न जो है सोचो और बताओ। तो जैसा कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इन प्रश्नों में करना क्या होता है, पर थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बता रही हूँ, दिए गए प्रश्नों का छोटे में उत्तर लिखना है बिना ज्यादा उस उत्तर को समझाए, ठीक है। आपके पास इसमें है 4 प्रश्न। बच्चों, आपको एक ज्यादा प्रश्न मिल गया है इस बार, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, है ना। अब है आपका पहला प्रश्न जो है माँ यशोदा कृष्णा को पालने में क्यों झुला रही थी। जैसा कि बच्चों आपने इस कविता में समझा कि हमारी जो माँ यशोदा थी ना, वह कृष्ण जी को पालने में झुला रही थी। तो अब सोचो और बताओ कि ऐसा क्यों कर रही थी हमारी यशोदा माँ, और जो भी सोचा है वह उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है कृष्ण को सुलाने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है कृष्ण को सुलाने के लिए। अब है आपका दूसरा प्रश्न जो है जब बालक कृष्ण पालने में अकुलाते हुए जग जाते थे तो मैया क्या रल करती थी। तो यह प्रश्न पूछता है कि जब कभी भी हमारे कृष्ण जी सोते सोते उनकी नींद टूट जाती थी तो जाग जाते थे, तब हमारी यशोदा मैया ऐसा क्या करती थी कि वह दोबारा सो जाए। आप सोचिए और इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। इसका उत्तर है मैया यशोदा उन्हें मधुर गाना सुनाती थी। अब है आपका तीसरा प्रश्न, जो है रसखान ने किसके भाग्य को सराहने की। यह प्रश्न पूछता है कि अंत में आपने नहीं देखा कि एक पक्षी की भाग्य की सराहना हुई है कि वह कितना खुशकिस्मत पक्षी था। तो उस पक्षी का नाम याद करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है कौवे के भाग्य की। अब आपका आखिरी प्रश्न है, इसमें रसखान किस क्षेत्र में निवास की इच्छा प्रकट करते हैं। अब हमने अंत वाले पैरा में हमने देखा कि हमारे जो रसखान थे ना, या फिर हमारे जो कवि थे ना, वह कहीं रहने की इच्छा प्रकट करते हैं जहाँ पे हमारे कृष्ण जी रहे हैं या फिर रहते हैं। तो उस जगह का नाम याद करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है ब्रज क्षेत्र में निवास की। अब हमारे पास है अगला प्रश्न, जो है बहुविकल्पिक प्रश्न। इसमें आपके पास है दो प्रश्न, जिसमें आप जानते ही हैं कि बहुविकल्पिक प्रश्नों में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उस सेंटेंस या फिर प्रश्न का आपको सही उत्तर चुनना होता है चार दिए गए उत्तरों में से। तो यहाँ पे आपके पास है दो प्रश्न, उसमें से पहला प्रश्न है जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सो निंद भवानी पावे। रेखांकित पद आया है। अब इस पद का पहले मतलब समझिए, फिर बताऊंगी कि इस प्रश्न में पूछा क्या है। इस प्रश्न का मतलब है जो सुख मुनि नहीं पा पाए, वह नंद और उसकी बीवी जो थी यशोदा मैया, उन्होंने पा लिया। तो अब इसमें प्रश्न है रेखांकित पद आया है किसके लिए, या फिर किसने वह सुख पा लिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास है चार उत्तर। पहला है देवकी के लिए, दूसरा है यशोदा के लिए, तीसरा है राधा के लिए, चौथा है ललिता के लिए। अब आपको बताना है कि इस पाठ में किसको यह बोला गया है कि जो सुख ऋषि मुनियों को नहीं मिला, वह सुख नंद और उसकी बीवी को मिला, किसके लिए बोला गया है। सोचिए और उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है ख यशोदा के लिए। अब है आपका दूसरा प्रश्न, जो है सूरदास के पदों की भाषा है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सूरदास हिंदी में नहीं लिखते, बल्कि संस्कृत और हिंदी का एक मिश्रित भाषा है जिसका एक नाम है। तो वह नाम सोचिए और बताइए कि कौन सी भाषा है वो। तो यहाँ पे आपके चार उत्तर है मारवाड़ी, दूसरा ढूंढाड़ी, तीसरा ब्रज, चौथा अवधी। इस प्रश्न का उत्तर है ग ब्रज भाषा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे, जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत छोटे जवाब लिखने होते हैं पूछे गए सवालों के। आपके पास है यहाँ पे तीन प्रश्न, तो आपको प्रत्येक प्रश्न के छोटे से जवाब लिखने होंगे। अब आपका पहला प्रश्न है रसखान की सेविया धूरे भरे अति शोभित श्याम्यू तेसे बने सिर सुंदर चोटी में कृष्ण के किस रूप का वर्णन है। अब यहाँ पे इस प्रश्न में बच्चों आपको एक पंक्ति दी हुई है, जहाँ पे आपको बताना है कि जो वाक्य बोला गया है वह कृष्ण के कौन से रूप, यानी कौन से, या तो जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, जब पालने में सोते थे, या जब वो युवक थे, या वह आपकी उम्र के बच्चे थे, तो आपको वह बताना है। ठीक है, तो यह शब्द कहता है कि धूल में खेलते हुए कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं और उनके सर पर बनी चोटी उन पर बहुत सुंदर लगती है। तो थोड़ा सा याद कीजिए कि जब कृष्ण का ये वर्णन हुआ था तब उनकी उम्र क्या रही होगी, और उस हिसाब से आप उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है कृष्ण के बाल रूप का वर्णन। अब आपका अगला प्रश्न है, किसकी लकुटी व कामरिया पर कवि तीनों लोगों के राज्य न्योछावर करना चाहते हैं? अब यह प्रश्न पूछता है किसकी है वो लकुटी जिस पर हमारे कवि तीनों लोगों के राज्य को न्योछावर करना चाहते हैं, है ना? तो एक छोटा सा हिंट देती हूँ, जिसके ऊपर यह पूरी कविता लिखी गई है ना, वो है वो नाम। तो वो नाम सोचो और अपने उत्तर में लिखो। इसका उत्तर है श्री कृष्ण की लकुटी। अब आपका आखिरी प्रश्न है, तू काहे ना बैगी सी आवे तो को काना बुलावे। यह काना द्वारा किसे बुलाने के लिए कहा गया है? इस वाक्य में जो है, जिसका मतलब है, तू काहे नहीं आता, तेरे को कान्हा बुला रहा है, जो हमारी यशोदा मैया ने बोला था किसी को बुलाने के लिए, याद करो। तो अब यह प्रश्न पूछता है हमारा कान्हा किसे बुला रहा है, इस प्रश्न में आप वह लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है कान्हा नंद या नींद को बुला रहे हैं। कान्हा नंद या नींद को बुला रहे हैं। अब आता है आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जहाँ पे आपको थोड़े से बड़े जवाब लिखने पड़ेंगे। अब वह जवाब एक लाइन के हो सकते हैं या दो लाइन के हो सकते हैं, है ना? तो इसमें आपके पास है तीन प्रश्न, जो है पहला प्रश्न जिसमें से माँ यशोदा मौन होकर इशारे कर करके क्या बात करती है। तो इस प्रश्न में ये पूछा है कि कभी कभी जो हमारी माँ यशोदा है इशारों इशारों में मौन होकर क्यों बात करती है। जैसे कभी कभी हमारे साथ नहीं होता कि जब कोई सो रहा होता है या कोई कुछ काम कर रहा होता है तो हम खुद मौन होकर इशारों इशारों में कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं देते, वैसे ही हमारी माँ यशोदा मौन होकर इशारों इशारों में क्यों बात करती है, आप सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है उन्हें लगता है कि उनका कान्हा सो गया है और उसकी नींद ना खराब हो। अब आपका दूसरा प्रश्न है कृष्ण जी कहाँ खेल रहे हैं? तो बच्चों आप थोड़ा सोच के बताइए कि हमारे कृष्ण जी इस कविता में कहाँ खेल रहे थे, और उसका जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है कृष्ण जी आंगन में खेलते फिर रहे थे। अब है आपका तीसरा प्रश्न, जो है रस खान अपने नैनों से क्या देखना चाहते हैं। अंत में रस खान ने कुछ इच्छा रखी थी कि वह अपने नैनों से कुछ देखना चाहते हैं या वह जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसी क्या चीज थी बच्चों, याद करो और अपनी कॉपी में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है, रस खान अपने नैनों से ब्रज भूमि के वनों, बागों तथा तालाबों को देखना चाहते हैं। अब है आपका एकदम आखिरी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए बड़े बड़े जवाब लिखने पड़ेंगे, 3-4 लाइन के, ताकि आप उस प्रश्न को अच्छे से बता पाए। इसमें आपके पास है 3 प्रश्न। पहला है उसमें से, श्री कृष्ण के बाल रूप का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो जैसे आपको बहुत सारी कहानी नहीं पता होगी कृष्ण जी की जब वो छोटे बच्चे थे, तो आप खुद बहुत सारी कहानियों को सोचिए और आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण जी बचपन में कैसे होंगे। यह प्रश्न आप खुद करेंगे और अपनी समझ के हिसाब से करेंगे। अब है आपका दूसरा प्रश्न, माँ यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या यल करती थी। यानी इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती थी ताकि वह आराम से सो जाए। आप उत्तर सोचिए और खुद लिखिए ताकि आपको पता चले। और सिर्फ इस पार्ट ने जो है वो ही नहीं लिखना, आपने बाहर जो सुना है या बड़ों से सुना है या खुद पढ़ा है वो भी लिखिए, ताकि आपको यह प्रश्न करने में मजा आए। आप यह प्रश्न भी खुद करेंगे और हम मिलके बस तीसरा प्रश्न एक साथ करेंगे, जो है, कवि रस खान कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या न्योछावर करने को तैयार है। तो आपने इस कविता में यह देखा कि हमारे जो कवि नहीं है सूरदास, वह कृष्ण के जीवन को जीने के लिए या कृष्ण के साथ जीने के लिए बहुत कुछ न्योछावर करने को तैयार है। तो सबके नाम लिखिए और हम इस प्रश्न को करेंगे। तो सबके नाम लिखिए अपनी कॉपी में, वह क्रमांक के अनुसार नहीं भी हो तो चलेगा। इस प्रश्न का उत्तर है, पहला तीनों लोकों के राज्य, दूसरा आठों सिद्धि और 9 निधिया, सोने की चीजें, तीसरा सोने की चीजें और चौथा बहुत सारे भवन और चौथा बहुत सारे भवन। आपने जो भी उत्तर लिखा है उसे रहने दीजिएगा, क्योंकि वह सही होगा। अब आते हैं हमारे व्याकरण पे। आज भाषा के 5 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है तत्सम भाषा, दूसरा है तद्भव भाषा, तीसरा है देशज भाषा, चौथा है विदेशज भाषा, पांचवा है शंकर। तो पहला है तत्सम। तत्सम की परिभाषा है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यो प्रचलित है, जैसे अग्नि, दुखद। तत्सम वह शब्द है या वह भाषा है जिसमें संस्कृत के शब्द वैसे ही लिए गए हैं बिना कोई बदलाव करे, जैसे अग्नि और दुखद। आपके है तद्भव शब्द जिसमें संस्कृत भाषा के शब्द लिए गए हैं पर उनमें बदलाव किए गए हैं ताकि वह आसान बन सके। जैसे शब्द है आग और दूध। तत्सम शब्द में अग्नि का मतलब है आग और दुग्ध में मतलब दूध। अब है तीसरा देशज भाषा जो है जैसे आपके गांव की एक अलग भाषा होगी और आपके पड़ोसी गांव की अलग भाषा होगी तो देशज भाषा वह भाषा है जो स्थानीय भाषा होती है किसी जगह की। जैसे राजस्थान में जगह जगह पे राजस्थानी होती है, मारवाड़ी होती है, फिर पता नहीं क्या क्या। वैसे ही जो स्थानीय भाषा है होती है वो होती है देशज भाषा। अगला है विदेशज भाषा जो होती है बाहर से आई हुई बाहर की संस्कृति की भाषा। जैसे अंग्रेजी है हमारी विदेशी भाषा, ठीक है, तो उसमें जो अंग्रेजी शब्द होंगे वो होगी विदेशज भाषा। उदाहरण के लिए डॉक्टर, स्कूल, यूनिफॉर्म आदि। और एकदम अंत में है आपका संकर भाषा जो है वे शब्द जो दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी। जैसे संकर भाषा में जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने हैं उन्हें कहेंगे संकर भाषा। जैसे उदाहरण के लिए टिकट घर, टिकट है अंग्रेजी शब्द जो है हमारा विदेशज भाषा, और हमारा जो घर है वो है तद्भव भाषा। तो जो दो भाषाओं के मेल से शब्द बनते हैं वो होते हैं संकर भाषा। तो बच्चों ये तो हुई हमारी पाठ की बात। अब आप खुद सोचिए कि जब आप बच्चे हैं या आपके भाई बहन को आपकी माता या पिता कैसे सुलाते हैं या उनकी देखभाल कैसे करते हैं, और आपको क्या लगता है कि आपके बचपन में उन्होंने आपकी देखभाल की कैसे होगी। वह सोचिए, आप कॉपी में मत लिख के लाइएगा। और आपको उत्तर नहीं पता हो ना तो आप अपने माता पिता से पूछिएगा तो आपको वह बहुत अच्छे से बताएंगे, और आप जो सुनेंगे ना आपको वह सुनने में बहुत मजा आएगा। तो एक बार घर जाके पूछना कि मम्मी पापा आपने मेरे बचपन में मेरे देखभाल कैसे की थी। या फिर नहीं पूछ पाए तो अपने भाई बहन को देखभाल आपके माता पिता कैसे करते हैं वही देख लेना, है ना। आज का पाठ हम यही खत्म करते हैं। खूब खेलिएगा, खूब पढ़िएगा, खूब मस्ती कीजिएगा, और भाई बहन के साथ बड़े प्रेम से रहना। हम मिलेंगे कल के पाठ में, तब तक बाय बच्चों।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।